ये जो इनकी पोप की जो आमद है अमेरिका में और जिस तरीके से वो आए हैं, इससे उनका एक तो वैसे भी वो पॉपुलर पोप हैं जैसे अभी हमारे दोस्त नदीम ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो अपना उनका जो शख्सियत है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी है कि बहुत फ्रेंडली हैं, प्रिटेंशियस नहीं हैं। उनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जब वो अमेरिका आए तो जहाँ प्रेसिडेंट ओबामा और दूसरे लोग बड़ी बड़ी एसयूवीज में और उसमें लिमोजीन्स में जा रहे थे, तो वो पोप जो है वो एक आम सी फियाट कार जो कि इटालियन कार है उसमें बैठ कर गए। और ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर था कि मैं अपने लिए ये चीज़ पसंद करता हूँ, मैं सादा हूँ, और उसके साथ साथ ये कि सादगी में एक पैगाम है इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए और दूसरों के लिए कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। प्रेसिडेंट ओबामा के साथ उनके बहुत से एजेंडा आइटम्स मिलते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं वो खुद भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट प्रेसिडेंट अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं और उन्होंने इस सिलसिले में बहुत से इकदाम भी किए हैं। और उनका जो मुआशी, जैसे आपने उसकी अभी फरमाया कि जो मुआशी इस्तेमारियत है जिसको हम इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कहते हैं, उसके बारे में भी हमारे जो ये पोप हैं वो बहुत खुलकर बात करते हैं और बोलते हैं। और ये बात भी सामने आई है कि अमेरिका और क्यूबा के जो ताल्लुकात थे उनको नरम करने में भी पोप के ऑफिस ने बहुत सा बैकग्राउंड में किरदार अदा किया है।
जी। लेकिन क्योंकि हम भी जानते हैं कि रिपब्लिकन्स भी इस मुल्क में रहते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लाइमेट चेंज की जो हैं वो मुखालफत करते हैं, वो समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ नहीं है। तो यानी कि डेमोक्रेट्स के अलावा जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है पोप की तरफ?
जी, जहाँ तक ये इन्वायरमेंटलिस्ट और ये जो माहौलियात है इसके बारे में जो स्टैंडिंग है पोप की, उस लिहाज से तो वो कहते हैं कि जो कैथोलिक्स हैं या जो पोप के मानने वाले हैं वो बहुत इंपीरियलिस्ट हैं। लेकिन जो के जो हम देखते हैं कि उनके जो दूसरे एजेंडा आइटम्स हैं कैथोलिक्स के या पोप के, उस सिलसिले में वो लोग उनकी उनके साथ हमायत करते हैं। जैसे अबॉर्शन इशू है और उसके बाद गेज राइट्स इश्यूज हैं, गेज मैरिज का जो इशू है, उस सिलसिले में जो स्टैंडिंग है कैथोलिक चर्च की, वो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो अपने आप को उसके साथ पाते हैं। तो जो कैथोलिक जिसको आप कहते हैं कि जो सियासी पोजीशन है और जो पोप्स की जो पोजीशन है उसमें एक तरह का ओवरलैप है कि वो डेमोक्रेटिक साइड पे भी है थोड़ा सा और थोड़ा सा रिपब्लिकन साइड पे भी है। और उसके साथ साथ ये कि जो कैथोलिक्स हैं वो डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं, इसलिए जो दोनों पार्टीज हैं वो बहुत एहतियात से इसके बारे में बात करें। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कहेगा कि एक तो पोप वैसे बहुत पॉपुलर हैं, वो अमेरिका पहली दफा आए हैं, कि इस दौरान में कोई भी ऐसी बात करे जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी या कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि उसका नुकसान उसी शख्स को होगा जो उनको बातें बनाएगा या
जी
बातें
जी जी
करेगा। रिपब्लिकन्स भी, वो इस वक्त रिपब्लिकन्स में भी पॉपुलर हैं।
नदीम याकूब, हमारे पास जो इतलात हैं वो ये कि व्हाइट हाउस में कोई खसूसी मीटिंग होने जा रही है या शायद हो गई होगी अब तक सदर ओबामा और पोप फ्रांसिस के दरमियान। कुछ मालूम है कि इसका एजेंडा क्या था?
जहाँ तक मुझे मालूम नहीं अभी, क्योंकि मैं तो अब दूसरी जगह जाने के लिए मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि उनकी एक मीटिंग होना था।
जी
जो चीज़ें अभी सुबह जो मीटिंग हुई है, एक पब्लिक जो मीटिंग हुई और जिसमें सदर ओबामा और पोप फ्रांसिस ने खिताब किया,
जी
मेरे ख्याल में जो एजेंडा उनका होगा यूएस में, उसकी एक झलक आपको उसमें नजर आए। तो अगर आपने देखा हो कि पोप फ्रांसिस ने बात की सोशल जस्टिस की, लिबर्टीज की,
जी जी
उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की,
जी जी
तो आज उन्होंने पहले दिन ही जो उनका जो एक जो उनका नुक्ता है जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं सदर के साथ या एक पावरफुल लीडर जो अमेरिका, और मेरे ख्याल में वो यही होगा उसमें, क्लाइमेट चेंज और ये जो लिबर्टीज सोशल जस्टिस, ये वो इश्यूज हैं जिनमें वो चाहेंगे कि वो दोनों मिलके कोई काम कर सकें, कोई लाया अमल तैयार कर सकें। आपने सुना कि सदर ओबामा, उन्होंने बहुत जिस तरह से खैर मकदम किया, उन्होंने इस बारे में कहा कि कि वो इन चीज़ों के बारे में वो उनके साथ मिलके और उनको अप्रिशिएट किया कि वो इन इश्यूज को उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों के लिए हैरान की इसलिए नहीं थी कि सबको मालूम है कि पोप फ्रांसिस एक मजहबी रहनुमा है, जहाँ पे वो कैथोलिसिज्म और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं या उनके वो जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनका अपना एक स्टांस है, चाहे वो अबॉर्शन के हवाले से हो, चाहे वो उन लोगों को माफ़ी देने के या उनकी उनको चर्च में दोबारा लाने के हवाले से है जो लोग चर्च कैथोलिक चर्च को छोड़ गए हैं, लेकिन उनका एक पॉलिटिकल इश्यूज पे भी अपना एक खास नुक्ता नज़र है और उसको वो हर जगह पे और हर जगह पे जहाँ पे भी उन्हें मौका मिलता है उसके बारे में बात कर चुके हैं और वो बहुत वोकल हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में।
जी जी,
ये वो इशू है जिसके बारे में शायद पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपनी एक्सपीरियंसी सियासत की वजह से मुख्तलिफ इशूज की वजह से बात नहीं कर सकते, और प्रोफेसर साहब आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे कि उसके पीछे क्या डायनामिक्स है, लेकिन पोप फ्रांसिस जो है उन्होंने आते इस बारे में बात की। मैं जो आपको दूसरी चीजें जो चूंकि आज यहाँ पे काफी गहमा गहमी है और वाशिंगटन पूरा तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे उसको सिक्योरिटी की वजह से बंद किया गया, अभी पोप फ्रांसिस एक और उनकी मीटिंग है जो बिशप्स के साथ है, फिर वो शाम को आफ्टरनून में आज वो एक मास या एक इबादत की वो सरबराही करेंगे जो कि बसिलिका यहाँ पे जो कैथीड्रल है वहां पे है, और उसमें एक पहले जो शुमाली अमेरिका के एक सेंट जो मुकर्रर किए जाएंगे उनकी कैनोनाइजेशन है, यानी ये कि वो रस्म है जिसमें उनको मुकद्दस मुकर्रर किया जाना या उनको बनाए जाने की वो तकरीब होगी। तो फ्रांसिस उस तकरीब के उसमें शिरकत करेंगे, उसकी जो रसूमात है वो अदा करेंगे।
अच्छा,
और ये जो प्रोसेस था ये पोप जॉन पॉल ने शुरू किया था, उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि ये जो सेंट मुकर्रर करना है कैथोलिक चर्च में उसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, तो पहला मरहला पोप जॉन पॉल ने शुरू किया, अब ये जो है एक फाइनल मरहला है जिसमें उसे कैनोनाइजेशन कहा जाता है।
अच्छा,
ये शाम को 4 बजे होगा।
अच्छा,
और कल आपको जैसा कि मालूम है कि वो एक फिर से अपने ये जो एजेंडा है या वो जो चीजें जो जिनके बारे में वो बात करना चाहते हैं वो जब जॉइंट सेशन कांग्रेस के इससे खिताब करेंगे तो वो ये चीजें उसमें भी उठाएंगे।
अच्छा,
और हमें बहुत क्लियरली ये चीजें मेरा ख्याल है हमें मालूम हो जाएगा कि वो किस तरफ उनकी डायरेक्शन क्या है और वो क्या हेल्प या किस तरह से वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो लीडरशिप है उससे मिलकर किस तरह से ये आगे बात बढ़ाना चाहेंगे।
जी प्रोफेसर फैज़ान, आप भी जानते हैं कि ये गालिबन आखिरी साल है सदर ओबामा का, आपके ख्याल में जिस तरह का पैगाम पोप फ्रांसिस लेकर आए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं, कल जिस तरह से नदीम याकूब ने कहा कि वो कांग्रेस के दोनों ऐवानों से ख़िताब करेंगे, फिर जुम्मे को अक़वामे मुत्तहिदा से ख़िताब करेंगे, आपके ख्याल में सदर ओबामा किसी तरह का उनसे तआवुन करने जा रहे हैं, पोप जिस तरह का की दुनिया देखना चाहते हैं उस पर?
जी, इसमें इनके उनके एजेंडा जो हैं उसमें खासी मुमासलत है। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ओबामा, क्योंकि ये उनका जैसे आपने कहा कि आखिरी साल है, और होता यूं है कि जो हमारी सदारती तारीख है अमेरिका की वो हमें ये बताती है कि अगले आखिरी 2 सालों में जो सदूर जो होते हैं अमरीका के वो खासे नडर हो जाते हैं, और वो जो जिस ख्यालात से वो आते हैं और जो वो अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं उस पर ज़्यादा काम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि एनवायरनमेंट यानी कि माहौल की जो एजेंडा है वो प्रेसिडेंट ओबामा की लेगेसी में शामिल है, उसको शमूलियत हासिल है, और प्रेसिडेंट ओबामा और पोप फ्रांसिस जो हैं वो इस चीज़ में एक दूसरे से एग्री करते हैं, और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में वो ज़रूर प्रेसिडेंट ओबामा चाहेंगे कि पोप फ्रांसिस की मौजूदगी और उनकी ये जो अमेरिका में रहना है इसको इस्तेमाल करके या इसके साथ कोई ऐसी चीज़ लॉन्च कर सकें जिससे उनके जो एजेंडा है उसको सपोर्ट मिल सके। और अभी तक पोप फ्रांसिस जो है उनको बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई दी गई है, बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये फोकस जो है वो ऐसा है कि जैसे आपको शायद आपको मालूम होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट भी चाइना के प्रेसिडेंट भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं।
जी जी।
मगर उनकी जो विजिट है उनका जो है वो दब गई है फ्रांसिस पोप फ्रांसिस की मौजूदगी में। ये कोई ऐसी डिलिबरेट बात नहीं है, मगर वो दब इसलिए गई है कि पोप फ्रांसिस जो है उनका स्टेचर ऐसा है कि मानने वाले हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, और माशी इस्तेमारियत यानी कि सोशल एम्पीरियलिज्म जो कि किसी जमाने में माओज़ेदुंग का नारा होता था जो चाइना में जो मुहिम चली, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारी नजरियाती शिफ्ट है वही एजेंडा है, वो शिफ्ट जो है वो मुंतकिल हो चुकी है एक और एरिया में, एक और जगह में, और एक और शख्स जो है वो एक और नस्ल का शख्स जो है वो इस सिलसिले में बात कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये बड़ी दिलचस्प बात है जिसपे हमें
बहुत
चले।
दिलचस्प है। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं पोप फ्रांसिस के दौरे अमेरिका के बारे में। हमारे साथ इस वक्त वीओए के नुमाइंदा नदीम याकूब हैं और मुस्लिम स्टडीज़ के प्रोफेसर फैज़ान हक हैं जो बफ़लो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर वक्फ़ा लेते हैं।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन इस सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूँ ताबिंदा नईम।
जी, पोप फ्रांसिस के दौरे अमेरिका पर कुछ कॉलर्स को लेते हैं। कोहाट से हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
इससे पहले बहुत से पोप साहिबान गुजरे हैं, लेकिन ये पोप फ्रांसिस साहब अपनी सादगी, मलनसारी और आजी की वजह से पसंदीदा हस्ती बन गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लेमोजीन को छोड़कर फिएट पे सफर करना पसंद किया। प्रोफेसर साहब से मेरा एक ही क्वेश्चन है, एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम अवाम के, किस वक्त कौन सा जमाना आएगा कि हमारे सियासतदानों में इस किस्म की मलनसारी आ जाए, बजाय इसके कि प्रोटोकॉल, गुरूर, तकब्बुर, हालांकि इनके पास
बहुत अच्छा सवाल
जाली
आपने
डिग्री
पूछा
होती है,
बहुत
ये
शुक्रिया
कब
आपके
वक्त
कॉल।
आएगा? थैंक यू वेरी मच।
जी, और हमें कॉल किया है मियां अकरम ने अटक से। मियां अकरम अटक से।
मैं मियां मोहम्मद अकरम अटक से अर्ज कर रहा हूँ। बात यह है कि मैं बड़े अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ, इस वक्त भी है मेरे सामने बहुत सी बाइबल और उनका मुंशिल किताब पड़ी है। बात यह है कि पोप फ्रांसिस वो तो सिंबल है कैथोलिकिज्म का, कैथोलिक चर्च का, और अमेरिका में या बर्तानिया में सारे प्रेसिडेंट या लोग ज्यादा प्रोफेसर है, तो एक दूसरे के बड़े दुश्मन होते हैं। हाउ वुड बी एबल पोप फ्रांसिस टू परसुएड दीस प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट कैसे उसकी बात मान लेंगे? थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, थैंक यू। और स्वाद से कॉल किया है बख्त ज्यादा ने। बख्त ज्यादा,
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम
मैडम। सबसे पहले तो मैं फैजान हक साहब को सलाम कह रहा हूँ कि उनको मेरा बहुत बहुत सलाम दीजिए।
अच्छा, वो आपके साथ ही हैं। जी
जी, अच्छा। इनके अलावा ये पोप जो है ये हकीकत में पसंदीदा इंसान है कि ये सारे कौम को अपने साथ इकट्ठे ले जाना चाहते हैं। अगर हमारे दरमियान भी ऐसे कोई और बंदे मिल जाए, बुजुर्ग मिल जाए, अच्छे बंदे मिल जाए, तो इंशाल्लाह ये सारी दुनिया, सारा माशरा बहुत अच्छा होगा। मेहरबान।
नदीम याकूब, आप बताइए कि प्रोटेस्टेंट्स की जो बात आई, क्योंकि ये कैथोलिक पोप हैं, आपके ख्याल में कोई है क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई इस तरह के फिरके हैं जो कि पोप को नहीं पसंद करते?
पे देखें, ये जो फिरकों की बात है या क्रिश्चियनिटी के अंदर डिविजन और वो मुख्तलिफ फिरके हैं, मेरे ख्याल में इस पोप ने अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन इनसे पहले जो पोप थे उन्होंने एक कोशिश की और उन्होंने काफी अपने आप को, उन्होंने जाके लोगों के साथ, दूसरे जो फिरकों के रहनुमा हैं उनसे बात की और उनसे कोशिश की कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ब्रिज किया जाए, इनको कम किया जाए। लेकिन जो बात ये जो हमारे कॉलर कर रहे थे, मेरे ख्याल में पोप फ्रांसिस की जो मकबूलियत है उसकी एक वजह ये है कि वो अपने एग्जाम्पल से, वो अपनी जिंदगी से वो बताना चाहते हैं और वो सादगी उनकी जिंदगी है। मिसाल के तौर पर अभी मैं कल आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो एंड्रू वे बेस पर उतरे तो जो डिग्निटरीज हैं, चाहे वो जो अमेरिका में आते हैं तो उनके लिए लिमोजीन्स होती हैं और एक पूरा काफिला होता है, काफिला तो इनके लिए भी था सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन पोप फ्रांसिस ने फैसला किया और वो एक छोटी सी गाड़ी इटालियन फियट जो है उसमें बैठ के वो वहां से निकले। एक ये और इस तरह की बहुत सी स्टोरीज हैं। वैटिकन में एक दिन मिसाल के तौर पे एक स्टोरी है, वो बाहर उन्होंने पार्किंग लॉट में देखा कि जो लोग वहां काम करने आते हैं उनकी कुछ बड़ी फैंसी किस्म की गाड़ियां थी, तो उन्होंने सबके ऊपर चिट्ठे लिख के लगा दी और वो ये था, मैसेज ये था कि आपको ये जेब नहीं देता, आपको एक मॉडर्न लाइफ जो है वो गुजारनी है, तो आप ये फैंसी गाड़ियां, तो उन्होंने ये साबित किया है। प्लस उनका जो गुर्बत का खात्मे के लिए बात है, वो सबकी सारी दुनिया में गुर्बत के खात्मे की बात है, उसमें सिर्फ कैथलिक्स की बात नहीं है। इसी तरह जब वो ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, ये जो है ये सारी चीजें जो है वो सिर्फ कैथलिक्स के वो लिए वो बात नहीं करते, वो पूरी दुनिया में चेंज के लिए बात करते हैं और वो ऐसी बातें जैसे मैंने पहले कहा वो करना चाहते हैं या जिनके ऊपर पॉलिटिशियंस जो है वो घबराते हैं बात करते हुए या उनको इतना करेज हौसला नहीं होता कि वो इन चीजों के बारे में बात कर सके। तो ये बात पोप की मकबूलियत की बात है और इसीलिए मैंने जो पहले भी कहा कि जब आप लोगों को देखते हैं, जैसे मैं अभी परेड में जहाँ पे जो लोग आए हुए थे उसमें हर किस्म के लोग हैं। खास तौर पे देखें अब क्यूबा जो है वो पहली दफा पॉलिटिकली, आपको पता है कि वो अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो है वो पहली दफा ऐसा हुआ है 50 साल में कि वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन क्यूबा के बारे में आपको ये भी पता है कि वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है जो कि मजहब की मजहबी आजादियों के हवाले से उनका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब जाके वहां पे ये मजहबी आजादी उनको मिली है और उनको वो कदरे पहले से बेहतर हालात हो रहे हैं मजहबी आजादी की वजह से और वहां पे बेशतर जो है वो कैथलिक्स हैं। तो पोप का विजिट क्यूबा का और इस हवाले से बात करना, ये ना सिर्फ उन कैथलिक्स के लिए जो कि आपको मालूम है पिछले 10-20 सालों के दौरान ऐसा हुआ और खासतौर पे पिछले 10 सालों में वेस्ट में मगरबी दुनिया में आपने देखा कि कैथलिक चर्च का इमेज जो था वो काफी खराब हुआ, उसमें वो जिनसी ज्यादती के वाकयात थे बच्चों के साथ मजहबी रहनुमाओं की जानिब से, और उस पर चर्च जो था कैथलिक चर्च वो उसने काफी हद तक पर्दा डालने की कोशिश की साल हर साल से, लेकिन ये पोप ऐसे हैं जिन्होंने आते ही उस हवाले से उसको एक्सेप्ट किया कि ये एक मसला है और उसको फेस करने के लिए उन्होंने उसके हल के लिए वहां पे एक काउंसिल बनाई
जी,
जो कि इस मसले को हल करेगी। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब यह है कि उनके ऐसे इकदाम उन्होंने लिए हैं जिससे उनकी मकबूलियत कैथलिक्स और दूसरे मजाहब में जो है वो उतनी ही वो मकबूल है जितने के वो कैथलिक
जी। और क्योंकि पोप फ्रांसिस 6 दिन तक अमेरिका में रहेंगे तो यकीनन हम आपसे दोबारा भी बात करेंगे। हमारे साथ थे VOA के नुमाइंदा नदीम याकूब और उनके साथ थे न्यूयॉर्क से मुस्लिम स्टडीज़ के प्रोफेसर फैज़ान हक। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं। जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहाँ रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ अल शेख ने आइसल के ख़िलाफ़ यानी दाइश के ख़िलाफ़ बयान दिया है और ये बयान उन्होंने हज के मौके पर मुसलमानों से ख़िताब करते हुए दिया है। हम इस सिलसिले में सबसे पहले आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सियासी तज्ज़ियाकार खालिद खुर्शीद से जो इस वक्त जद्दा में हैं اور اردو نیوز میں کام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض. لیکن آئیے سب سے پہلے یہ رپورٹ سنتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے کہا ہے کہ تشدد اور انتشار پھیلانے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسے گمراہ لوگ دین اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں. بدھ کو حج کے مرکزی رکن وقوف عرفہ کے موقع پر مسجد نمرہ میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج کے زمانے میں فتنہ پھیل چکا ہے اور داعش اسلام کے نام پر امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی سازش کر رہا ہے. شدت پسند گروپ داعش نے گزشتہ سال عراق اور شام کے مختلف حصوں پر قبضہ کر کے یہاں نام نہاد خلافت قائم کرنے کے علاوہ قتل عام اور اذیت رسانیوں کا بازار گرم کر رکھا ہے. مفتی اعظم کا کہنا تھا کہ اسلام کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا غیر مسلموں کو بھی قتل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر قسم کے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. خطبہ حج میں مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز نے مسلمانوں کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلام کے خارجی و داخلی دشمنوں سے باخبر رہیں اور امت مسلمہ اختلافات بھلا کر متحد ہو جائے. انہوں نے علم حاصل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان نظام تعلیم کو بہتر کریں، کیونکہ علم حاصل کر کے ہی اسلام دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو صاحب استطاعت مسلمان پر پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس سال دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں. حجاج کرام بدھ کو غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کر کے رات وہیں قیام کریں گے. حج کے موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق 1 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کو خصوصی طور پر تعینات کیا گیا ہے. بدھ کی صبح مکہ میں غلاف کعبہ بھی تبدیل کیا گیا، جو کہ ہر سال اسلامی مہینے ذی الحج کی 9 تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس بار غلاف کعبہ کی تیاری میں 165 کلو سونا اور چاندی اور 670 کلو خالص ریشم استعمال کیا گیا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم جدہ چلتے ہیں جہاں سے خالد خورشید لائن پر ہیں. خالد خورشید، آپ کو خوش آمدید.
جی، بہت شکریہ.
آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے یہ جو بیان دیا ہے داعش کے خلاف، ہم بھی جانتے ہیں کہ بڑے اہم موقع پہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے جب لاکھوں مسلمان وہاں جمع ہیں. ان کے بارے میں بتائیے کہ ان کے بیان کو کس طرح لیا جا رہا ہے اور کتنا اہم ہے یہ بیان اس موقع پر.
یہ دیکھیں، حج جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور یہاں جو مفتی اعظم جو خطبہ حج دیتے ہیں اس کو ہمیشہ سے اہمیت دی جاتی رہی ہے، اور اب بھی جو خطبہ حج دیا ہے انہوں نے بہت واضح طور پر اسلام کی جو صحیح تصویر ہے انہوں نے وہ پیش کی ہے، اور اس کو عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے. اور جو مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہے، انہوں نے اسلام اور عالم اسلام کو درپیش مسائل کا نہ صرف بہترین حل پیش کیا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اسلام کا تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اسلام کا صحیح نقطہ نظر پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسلام جاہلیت کی ممانعت کرتا ہے اور امن کا درس دیتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ممالک سمیت ہمیں اپنی داخلی اور خارجی پالیسیوں کو بھی اسلامی شعار کے مطابق ڈھالنا ہوگا.
یہ بتائیے خالد خورشید، کیونکہ جو ہمیں تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ داعش کی حمایت کرنے والے، سخت گیر موقف رکھنے والے، شاید سنی وہابی جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. کیا ایسے لوگ ہیں سعودی عرب کے اندر جو ابھی تک اپنی ذاتی حیثیت میں داعش کی حمایت کرتے ہیں؟
دیکھیں، یہ ہر معاشرے میں چند لوگ ہوتے ہیں. آپ عیسائیت کو دیکھ لیں، ہندو مذہب کو دیکھ لیں، یا دیگر مذاہب کو دیکھ لیں، چند انتہا پسند اس میں موجود ہیں. یقیناً اسلام میں بھی ہیں، اور اسلام اور اس کی سد باب کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں.
جی جی، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض لائن پر ہیں. محمد ریاض، آپ کو بھی خوش آمدید. محمد ریاض تو ہم اس وقت مفتی اعظم نے جو بیان دیا ہے داعش کے خلاف، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے منسلک ایک جو خبر جو ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں غازی عبد الرشید، جو آپ جانتے ہیں لال مسجد کے تھے رہنما، ان کے بیٹوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، کچھ ہمیں اس سلسلے میں بتائیے۔
دیکھیے، یہ تو جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس زمانے سے ہی جو ہے ان لوگوں نے یعنی عوام کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا تھا، اور اس زمانے سے ہی یہ لوگ جو ہے طاقت کے استعمال پر یقین رکھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے لوگوں کو کے خلاف جو ہے وہ سخت قسم کے اقدامات کیے جائیں۔ اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو مدرسہ تھا برابر میں، مدرسہ جو حفصہ تھا، اس کی جو خواتین تھیں وہ مختلف بیوٹی پارلر کی جیل پہ چلی گئی تھیں، اور وہاں سے جو ہے وہ غیر ملکی خواتین کو پکڑ کر لے آئیں اور ان کو یعنی اسلامی حجاب اور لباس اور اس قسم کا جو ہے ان کو درس دیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے جاری تھا، اور پھر انہوں نے یعنی وفاقی حکومت کے دارالحکومت میں بیٹھ کے انہوں نے نہ صرف حکومت کی رٹ کو جو ہے چیلنج کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ یہ ان کو اس انداز سے جو اسلام کی تعلیمات جو جس کا وہ ذکر کرتے تھے کہ اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہ وہ، اور اسی لڑائی میں یعنی اسی تصادم کے اندر جو ہے وہ لوگ مارے گئے، اس میں بڑا بعد میں ہوا کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارے گئے، بچیاں بھی ماری گئیں، بہت کچھ سلسلہ ہوا۔ اب یہ ہے کہ غازی عبد الرشید صاحب جو تھے ان کی وفات کے بعد جو ہے، اب یہ ہے کہ ان لال مسجد کو دوبارہ جو ہے ان کے بھائی نے اور دیگر لوگوں نے، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے دوبارہ اس کو وہی شکل دے دی۔ اب یہ ہوا کہ جب ملک میں ضرب عزت کے نام سے جو ہے ہر کہیں جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہو رہا تھا، تو لازمی بات ہے کہ جب فاٹا میں ہو رہا ہے، کراچی میں ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پر ہو رہا ہے، تو جو دارالحکومت ہے وہاں پر جو ہے بھی جو ہے آوازیں اٹھنے لگیں کہ بھائی اس طرف ہی توجہ دی جائے۔
لیکن خصوصاً یہ بتائیے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، یہ جو دو لڑکے ہیں حارث اور ہارون، جو بتایا جاتا ہے کہ غازی عبد الرشید کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے پاس جو خبریں ہیں کہ وہ فوجی یونیفارم پہنے ہوئے تھے اور غالباً کوئی دہشت گرد حملہ کرنے جا رہے تھے، اس کے بارے میں کوئی تصدیق ہوئی ہے؟
نہیں، ابھی تک تو نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کا تعلق جو ہے وہ ہے یعنی فقیری طور پر تو جو ہے یہ دیوبند مسجد کے لوگ ہیں، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو خاکی وردیاں پہننی ہوتی ہیں، اور دور سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ فوجی ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی خاکی وردیاں پہننی ہوتی ہیں اور وہ جو ہے سٹار بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کوشش کی ہے بہت سے لوگوں سے معلوم کرنے کی کہ وہ واقعی جو پاکستانی فوج ہے اس کی وردی میں ملبوس تھے، ابھی تک یہ چیز کنفرم نہیں ہے۔
اچھا جی 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 جی، اس وقت ہم خالد خورشید کی طرف لوٹتے ہیں۔ خالد خورشید، آپ جدہ میں ہیں، آپ پاکستان میں سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کیا ایسے پاکستانی ہیں جو آئیسل میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکستان سے سعودی عرب اور مشرق وسطی میں آتے ہیں؟
رپورٹیں تو آتی رہتی ہیں، اور یہ مغربی میڈیا میں زیادہ رپورٹیں ہیں، مگر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں مشرق وسطی میں، خصوصاً سعودی عرب میں، اس قسم کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا۔ خود جو یہاں پاکستانی مقیم ہیں یا دوسرے مسلمان سعودی عرب میں مقیم ہیں، وہ یہاں کی سعودی عرب کی پالیسیوں سے خاصے مطمئن نظر آتے ہیں، اور اسلام کے مطابق اپنے جو اسلام جو امن کا درس دیتا ہے، تشدد سے دوری کا درس دیتا ہے، اس پر عمل پیرا ہے۔
لیکن ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہ پناہ گزین جو اس وقت بہت سارے شام سے نکل کر یورپ جا رہے ہیں، اس میں بھی کچھ پاکستانی شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کہیں کوئی دہشت گردی کا معاملہ ابھر سکتا ہے اس کی وجہ سے؟
نہیں، دیکھیں، یہ ساری جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ جو پاکستانی، جو برطانوی پاکستانی ہیں یا یورپ میں بسنے والے پاکستانی ہیں، ان کی طرف سے چند اطلاعات آئیں تھیں کہ ان کی فیملیز یا ان کے نوجوان وہ شام یا عراق یا ان جگہوں پر جا رہے ہیں اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سعودی عرب اور اس سے مہلک علاقوں سے متعلق ایسی کوئی رپورٹ ایسے سامنے نہیں آئی.
اچھا جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. بہت مختصر کچھ کالرز کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو باری باری سنتے ہیں. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم سر, داؤد گھر سے بات کر رہا ہوں. ایک طرف تو پوپ فرانسس صاحب دنیا کو امن, سادگی اور محبت کا پیغام دے رہے ہیں, اور دوسری طرف حج کے موقع پر مفتی اعظم دنیا کو داعش کے خلاف فتوی دے رہے ہیں. تو یہ دنیا جہان کی دولت عربوں کے پاس ہے, اور یہ عرب دولت پہ جو ہے نا چمڑے بیٹھے ہیں, یہ غریب ملکوں پر دولت کو تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے؟
جی جی جی, اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. ایک اور کالر ہیں, ایک اور کالر ہیں.
اسی لیے تو دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے کہ عرب دولت پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور غریب لوگ جو ہے وہ دہشت گردی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟
اچھا ایک اور کالر ہیں. جی جناب کہاں سے کال کریں؟ جی جی کہیے, کہاں سے کال کریں آپ؟
لیاقت الملک ضلع دیر سے بات کر رہا
ہوں. جی جی کہیے.
یہ آج شیخ عبدالعزیز صاحب نے, مفتی صاحب نے جو خطبہ دیا ہے بالکل حقیقت ہے, اور انہوں نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں جن پر پردے ہیں. اصل میں یہ حج کا موقع جو ہے, یہ ہر سال اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مل کر وہ اپنی بین الاقوامی ایشوز پر سوچے. یہ عبادت ہے اس لیے کہ ایک طرف تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرے قربانیوں کے حوالے سے, بی بی ہاجرہ کی دوڑ کے حوالے سے, خواتین کے احترام کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ سنت بن گیا ہے. اور دوسری بات, ہمارے شیخ صاحب پوری انسان مسلمان ملت کو بتائے کہ آپ اپنے بارے میں سوچے, اپنے اقتصادیات کے بارے میں, اپنی سیاسیات کے بارے میں, اور ان دشمنوں کے بارے میں جو آپ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ داعش جو ہے, یا آئیس جو ہے, یا بوکو حرام جو ہے, یا اور بھی جتنے ہیں, یہ دشمن کے سازشیں ہیں, خواہ اس میں عرب کا ہاتھ ہو یا نہ ہو. دوسری بات, جو مہاجرین کے حوالے سے ہے وہ مسلمانوں کو ایک غلط میسج جا رہے ہیں کہ یورپ میں یہ لوگ ان کو جگہ دے رہے ہیں اور مسلمان کنٹریز نہیں دے رہے ہیں.
اچھا بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. ہمیں دنیا پور سے کال کیا ہے حافظ محمد اسلم نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
جی بہن کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک.
جی جی جلدی سے کہیے.
جی بہن, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مطلب جس طرح کا مطلب خطبے کی بات کر رہے ہیں, میرے بھائی صاحب نے جواب دیا کہ یہ خطبہ دے رہے ہیں, اس طرح کی تنقید ہو رہی ہے, کیونکہ جو مفتی اعظم پاکستان, مفتی اعظم ہیں یہ, تو اس کے لیے ان کو, ان دوستوں کو یہ چاہیے ہے کہ آخر وہ امام کعبہ بھی ہیں, مطلب حج کا خطبہ بھی دیتے ہیں, ان کے لیے تو کم از کم برا بھلا نہیں کہنا چاہیے.
اچھا وہ فقط یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاشی ہمواری کی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, اور جس طرح پوپ فرانسس نے کی تھی وہ ایک مقابلہ کر رہے تھے. باہر کیف, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے اردو نیوز میں سیاسی تجزیہ کار خالد خورشید جو جدہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے محمد ریاض جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اس وقت لندن میں ہیں, جہاں سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بھارت سے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کشمیر کا معاملہ ضرور اٹھایا جائے گا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے وہ اقوام متحدہ میں تقریر کریں گے, اور سوچا جا رہا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو اٹھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے سیاسی تجزیہ کار عدنان عادل ہیں, جبکہ بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے منیش کمار نے. تو منیش کمار سے ابتدا کرتے ہیں. آپ کو خوش آمدید. جی منیش کمار.
ہاں
جی جی جی. تو کچھ آپ بتائیں, بھارت سے جو ہمیں کچھ معلومات مل رہی ہیں وہ یہ کہ سشما स्वराज ने कहा है कि भारत और अमेरिका मिलकर मुंबई दहशतगर्द हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं। आपके ख्याल में कुछ प्रेशर पहुंच रहा है पाकिस्तान पर इस सिलसिले में?
देखिए, ये सुषमा स्वराज का बयान नहीं है, ये यूएस और इंडिया का ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है उसका ये लबोलुभाव है।
अच्छा।
जो रिलीज किया गया, जहाँ पे जॉन केरी साहब और सुषमा स्वराज जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके बीच जो बातचीत हुई है उसका ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का वो हिस्सा है जिसमें दो बातें कही गई। पहली बात है ये कि हिंदुस्तान और अमेरिका डी कंपनी माने दाऊद इब्राहिम, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है एक साथ मिलके इनकी लड़ाई लड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि उस डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को जो मुंबई में अटैक जो हुआ था उसके जो गुनहगार हैं जिसमें 6 देश के लोग मारे गए थे उसके ऊपर जो है पाकिस्तान उसको सजा दिलवाए। ये दो मुख्य बातें जो हैं ये उस डिक्लेरेशन में आया है और ये ऐसे समय पे आया है जब बहुत गहमा गर्मी है। दो तीन बातें पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, एक तो आपने बताया और दूसरा जो है वो सत्ताज अजीज साहब ने कहा कि यूएन असेंबली में शायद पाकिस्तान की तरफ से ये उठाया जाए कि हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर जो कुछ वॉयलेंस हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार बताया जाएगा। तो ये माहौल जो है अभी तत्काल का बना हुआ है। लेकिन एक बात जो मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका की तरफ से जो ऑफकोर्स पाकिस्तान का एलाई इतने दिन तक रहा है वहां पे जो माहौल है वो बहुत बदला सा नजर आ रहा है। जैसा कि एक रिपोर्ट मैंने देख रहा था कि यूएस रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो फ्रंट रनर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ये कहना है कि इंडिया और अमेरिका को एक साथ नजर रखना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर कि अगर कहीं पाकिस्तान कल अनस्टेबल हो गया तो। कहने का मतलब यह है कि उनकी बात क्या है, माने वो उसमें नहीं जाते हैं कि उनकी बात में मेरिट क्या है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि वर्ल्ड लेवल पे जो पाकिस्तान की जो इमेज जा रही है वो उसको एक सुधारना होगा। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लीडरान को बैठ करके उसको ये करना पड़ेगा कि ताकि हम वर्ल्ड स्टेज पे जाकर के एक ऐसे देश के माने इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह जो है हम नजर ना आए।
जी जी बिल्कुल। इस वक्त हम लाहौर चलते हैं जहां से हमारे साथ सियासी तज्जियाकार अदनान आदिल लाइन पर हैं। अदनान आदिल, आपको खुश आमदेद।
जी,
तो आपने भी सुना कि जिस तरह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बयान दिया, गालिबन इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो किसी भी तरह का लचक दिखा नहीं रही है कश्मीर के मामले पर, आपकी क्या पेशन गोई है कि क्या ये दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान कोई मुलाकात होगी अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में, और अगर होगी तो किस तरह की बात होगी?
बात ये है कि ये दोनों एक ही होटल में ठहरेंगे न्यूयॉर्क में, और इनके साथ चीनी सदर भी हैं वहाँ और रूस के सदर पुतिन भी हैं, तो इस बात का तो इम्कान मौजूद है कि इनकी आपस में मुठभेड़ कहीं हो जाए, आपस में एक दूसरे से आमना सामना हो जाए और ग्रीटिंग एक्सचेंज हो, सलाम दुआ हो जाए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई बैक चैनल हो सकता है कि ज्यादा डिप्लोमेसी हो, कि हालात खासे खराब हैं इस वक्त क्योंकि वर्किंग बाउंड्री पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान ये बार बार उनके हाई कमिश्नर को, डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर एहतजाज करता है जब भी कोई बड़ा वाकया वर्किंग बाउंड्री सियालकोट सेक्टर में होता है। तो पाकिस्तान का इस वक्त ये मौकफ है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा वर्किंग बाउंड्री पे फायरिंग बहुत ज्यादा हो गई है और उन्होंने हमारे सिविलियन कैजुअलिटीज और हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तो कोई इंडिया की तरफ से लिमिटेड वॉर की जो बातें हैं वो भी ज्यादा शिद्दो मत से उठाई जा रही हैं। तो इस माहौल में जबकि बाज़ोकात लगता है कि किसी वक्त भी कोई किसी किस्म की सरहदी झड़प जो है जंग में भी तब्दील हो सकती है, तो जरूरत तो है कि दोनों मुल्क कोई अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए। और अभी थोड़े चंद हफ्ते पहले ही इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रेंजर्स के सरबराहान भी मिले थे, उनकी हर 6 महीने बाद जो मीटिंग होती है वो हुई थी। तो उसके बाद अब ये तो एक जरूरत तो है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं उनके दरमियान कोई ऐसा चैनल हो कि वो सिफारती सतह पर एक टेंशन को डिफ्यूज कर सकें और किसी खतरनाक हद तक जाने से गुरेज कर सकें।
बिल्कुल।
लेकिन जी, इस वक्त नवाज शरीफ के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो कोई ऐसी मुलाकात करें, क्योंकि उफा में जो उन्होंने मोदी से मुलाकात की थी उसका बहुत मनफी असर उन पर हुआ था, और अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं।
मनीष कुमार, जाने से पहले आप हमें बताएं कि भारत के अंदर कोई डिबेट इस वक्त चल रही है क्या, आवाम और मीडिया और इस तरह की जो हैं हलकों में कोई बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ मफाहमत करनी चाहिए?
थैंक गॉड अभी हिंदुस्तान के अंदर में जो है वो मीडिया जो है कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर के बिजी है और पाकिस्तान को लेकर के वो बिजी नहीं है। अच्छा। और मैं थैंक गॉड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर मीडिया जो है उसका रोल बड़ा ही नेगेटिव रहता है। अच्छा। उन्हें लगता है ये पता नहीं ये क्या एक प्रकार का एक किस्म की जो है ये मेंटल ब्लॉक सा लग गया है कि मीडिया में अगर जब भी डिस्कशन होता है तो माहौल और ज्यादा खराब ही हो जाता है। वो सेंसिबल लोग शायद अब मीडिया में नहीं आना चाहते हैं या आगे बढ़ के नहीं आना चाहते, या एडिटोरियल पॉलिसी जिस तरह की हो गई है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ा दो किसी तरीके से। तो अभी अच्छी बात है कि भाई हिंदुस्तान में जो मीडिया जो है वो पाकिस्तान को लेकर के फोकस नहीं है कि भाई वहां क्या होने वाला है, अभी हिंदुस्तान की मीडिया किसी और चीज में बिजी है। अच्छा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन जो ये कहना पड़ेगा कि अच्छा ये सही नहीं लगता है कि दो इतने बड़े देश जिसका इतना बड़ा रिच हिस्ट्री रहा हो वो आपस में इस तरह से जो बच्चों की तरह लड़ाई लड़े और जिसमें किसी तीसरे चौधरी को जो है इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़े।
जी,
अच्छा
और
होता कि अच्छा होता कि दोनों लीडर्स अमेरिका में मिलते, कुछ बातचीत करते, कुछ रास्ता निकालते, और ये जो सरहद के ऊपर जो गोलियां खामखा जो चलाई जा रही है, यूजलेस वॉर जो चल रहा है, वो उस पे जो है कोई रोकथाम होता।
जी, और हम देखेंगे कि अगले मंगल को क्या होता है। हमारे साथ अदनान आदिल, आप हमारे साथ रहें, लेकिन इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मनीष कुमार का जो नई दिल्ली में होते हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं।
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि स्वात में एक 13 साल लड़की हदीका बशीर को कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने के की वजह से उन्हें एक अवार्ड दिया गया है। इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि चिल्ड्रंस ग्लोबल नेटवर्क की चीफ एग्जीक्यूटिव महनाज अजीज़ हमें ज्वाइन करें, लेकिन पिछले सेगमेंट से हमारे साथ हैं सियासी तज़्ज़ियाकार अदनान आदिल। अदनान आदिल, आपको हम एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं इस मौजू पर, और ये वीडियो रिपोर्ट तैयार की है नीलूफर मोगल ने। आइए देखते हैं और सुनते हैं।
है और हमारा एक यंग गर्ल ग्रुप है जिसका नाम है गर्ल्स यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट्स, और हम गर्ल्स राइट्स पे काम कर रहे हैं, खासी तौर पर सेहत तालीम कमजोरी की शादी के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसमें हम घर घर जाते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और इसमें हम कम्युनिटी थिएटर्स होते हैं, और इसमें हमने केसेस भी डील की हैं। एक लड़की की जिसकी कम उम्री में शादी हुई थी वो और उसकी दूसरी बहन थी जिसको वो 7 साल की थी, जिसकी भी कम उम्री में शादी हो रही थी, और वो जो लड़का था, लड़का तो नहीं कह सकते लेकिन आदमी था, वो 42 ईयर्स का था, उसके साथ शादी हो रही थी। और हम गए और उनकी अम्मी अब्बू को कन्विंस किया, और उसकी जो शादी हो रही थी उसको हमने रोका। उन्होंने ये बताया कि हमने कहा कि आपकी इसको क्यों, इसकी क्यों शादी करवा रहे हैं, इसको स्कूल भेजे, तो उन्होंने कहा कि हम गुर्बत की वजह से इसको स्कूल नहीं भेज रहे। तो हमने हमारी ग्रुप बैठी और हमने ये फैसला किया कि हम इसको हमने चंदा इकट्ठा करेंगे, महीने महीने इनको इसकी जो वैन फीस है हम उसे देंगे। एक और भी केस है जिसकी एक बहन की नाक कटवाई थी और दूसरी बहन की जो थी जिसकी नाक कटवाई थी वो उसकी भी कम उम्री में शादी हुई थी, और जो उसकी दूसरी बहन थी उसकी भी कम उम्री में शादी हो रही थी। और हम गए और उनसे उनकी अम्मी अब्बू से हमने बात की और उनको हमने कन्विंस किया ये केसेस से जो हमने हम इसमें कामयाब हुए हैं।
शुक्रिया हदीका। और हमारे जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनको ये भी बताइए कि आपने कब से ये काम शुरू किया, आप जैसे अपने इलाके से आपने इस काम का आगाज़ किया तो आपकी कितनी उम्र थी जब आपने इस काम का आगाज़ किया?
मैं जब क्लास 6 में थी कि मेरी क्लासमेट थी जिसकी कमुंडी में शादी हुई थी, और जब वो दूसरी साल आई वो प्रेग्नेंट हुई और उसके साथ तशद्दुद हो रहा था, उसके साथ ससुर और उसके हस्बैंड सब उन पर तशद्दुद कर रहे थे। और फिर दूसरे साल जो थी वो हमारी स्कूल आई और हम उससे बातें कर रहे थे हमारे फ्रेंड्स, और हमने उससे पूछा, हम बहुत खुश हो रहे थे उसकी शादी में पहले, तो हमने कहा कि अभी बहुत खुश होगी, और हम उससे बातें कर रहे थे, उसने कहा कि मेरे साथ बहुत तशद्दुद होता है, मेरे घर वाले मेरे साथ बहुत तशद्दुद करते हैं। और उसी साल मेरी दादी ने कहा कि मैं आपकी शादी करवाऊंगी, और मुझे कहा कि बस ये लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करवाएं, मेरे अब्बू से बात की।
जी आपने ये वीडियो रिपोर्ट सुनी, और अदनान आदिल आपने भी सुना इनको, हदीका को?
जी
तो
बिल्कुल
जी, तो सुनने वालों को बताइए कि नौ उम्र बच्चियों की जो शादियां होती हैं, आपके ख्याल में ख़ानदानी मंसूबा बंदी को किस हद तक धचका पहुंचता है इसकी वजह से, और ख़वातीन जो बाख्तियार होने की कोशिश करती हैं उनको भी तो एक ज़र्ब पहुंचता है ना इससे? जी
इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। एक तो ये है कि बच्चियों की शादी जब कम उम्र में, 16 साल से भी कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, और ये फिगर्स हैं कि 24% जो लड़कियां हैं पाकिस्तान में उनकी शादी 18 साल से कम में हो जाती है। कुछ सर्वेज में तो यहाँ तक है कि 40-42% जो लड़कियां पाकिस्तान में हैं वो 18 साल से कम उम्र की में शादी हो जाती है। और ये ज्यादातर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पाकिस्तान का बेशतर इलाका एक कबाइली माशरत है और नीम कबाइली माशरत है, यहाँ पर बहुत थोड़े से पॉकेट्स हैं अर्बन, तो जो सिंध और पंजाब के रूरल इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के, वहाँ ये बहुत ज्यादा है, शहरों की नस्बत वहाँ पे ये चीज ज्यादा है कम उम्र की लड़कियों की शादी करने का रिवाज, जिसके पीछे उनके कस्टम्स भी हैं, रिवायात भी हैं, और इसमें गुर्बत का अंसर भी है। जब 7-8 बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं ज्यादा, लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उनकी शादियां करें ताकि उनका खर्चा बोझ ना बने उनके ऊपर। और एक अफसोसनाक पहलू ये है कि लड़कियों की शादी, ऐसी कम उम्र की लड़कियों की शादी ज्यादा उम्र के मर्दों से کر دی جاتی ہے جن کے پاس کچھ پیسے زیادہ ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچی جو ہے ایک خوشحال گھرانے میں چلی جائے گی. تو اس کے آپ نے جیسے نقصانات کی بات کی, تو اس کے نقصان ایک صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد زیادہ ہو جاتی ہے, خاندان بڑا ہوتا ہے, بلکہ ایک نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے, اس کی جو اپنی معاشی اس کی جو اپنی معاشی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ایک غلامانہ زندگی اس کی ہو جاتی ہے. جب ایک بڑے مرد سے ایک بہت ہی کم عمر کی بچی ہو, وہ ایک ماسٹر اور ایک مالک اور غلام کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے بیچ میں. پھر سرویز ہیں اور اسٹڈیز ہیں جو کم عمر کی بچیوں کی شادی ہے, ان کی بچے پیدا ہونے کے دوران اموات کی شرح بہت زیادہ ہے, جو ہمارے ملک میں زچہ کی اموات کی شرح زیادہ ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کم عمر کی لڑکیوں کی یہاں حمل ہوتا ہے اور جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی, تو ان کی اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا جسم جو ہے ابھی بچہ پیدا کرنے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہوتا, اور ان کی صحت اس قابل نہیں ہوتی. تو اس کے ایک نہیں بہت سے پہلو ہیں, نقصانات ہیں. اس پہ ہمارا ایک لا ہے, 1929 میں انگریز دور میں ایک لا بنا تھا جس میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ اس کو کہتے تھے, 1929 میں وہ بنا تھا ہندو آبادی کے لیے, لیکن ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے پرزور طور پر اس وقت وکالت کی کہ اس کو اطلاق مسلمانوں پر بھی ہونا چاہیے, اور وہ پھر تمام ہندو اور مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوا کہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کی جو ہے شادی نہیں ہوگی. اور اس وقت مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے ان کی مخالفت کی تھی سوائے شبلی نعمانی کے, لیکن قائد اعظم کا بڑا رول تھا کہ وہ جو لا ہے جس میں کم عمر کی بچیوں کی شادی کو منع کیا گیا ہے, اس کا اطلاق ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر بھی ہو.
لیکن آپ ہی جانتے ہیں کہ دستوری قانون جو ہے وہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ جو قانون ہے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم میں کچھ کالز آئی ہیں علاقے سے ہی, ان کو باری باری لیتے ہیں. بنو سے کال کیا ہے محمد جاوید نے. محمد جاوید
جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان غربت بہت زیادہ ہے, اگر غربت نہ ہوتی تو کم عمر کی شادی بھی نہ ہوتی, اس لیے کہ کم عمر کا شادی جو ہے وہ تو دین اسلام جو ہے ان کا ان میں بھی یعنی اجازت نہیں ہے.
آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غربت جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی. ڈی آئی خان چلتے ہیں جہاں سے عمر خان کچھ کہنا چاہتے ہیں.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام
جی. کہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم تو مسلمان ہیں, تو ویسے ہمارے دین عالم جو ہے یہ بار بار کہہ رہے تھے جو لڑکی بالغ ہوگا اس کا شادی لازمی ہے. آیا ہم اسلام کے اوپر,
ہم تو نابالغ کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بہت ہی چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے, اور جس کی وجہ سے اس خاتون کو جو ہے وہ ایک اوارڈ ملا ہے. عدنان عادل, جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ سوات میں اس لڑکی نے جد و جہد کی, یہ کتنی غیر معمولی بات ہے.
بہت غیر معمولی بات ہے. میں سوات بہت دفعہ جا چکا ہوں, وہاں کا میں دیکھا ہے کہ بہت ہی قبائلی معاشرہ ہے وہاں کا, اور پرانے جو رسم و رواج ہیں اور اس کی بہت جکڑ بندی ہے. اور جو ہمارے دیکھیں اسلام جو ہے اس کو کئی طرح سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے مولوی اس کی تشریح لوگوں کو بتاتے ہیں وہی درست ہے. اب جیسے سندھ میں انہوں نے قانون پاس کر دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی, اس کی سزا بڑی سخت کر دی ہے انہوں نے, اس کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا ہے. پنجاب میں بھی قانون تبدیل ہوا ہے لیکن عمر کم نہیں کی گئی ہے, بلکہ سزا میں ذرا اضافہ کر دیا گیا ہے, 16 سال تک کی لڑکی کی شادی. یہ علماء نے اس کی مخالفت کی ہے, جے یو آئی کے مولانا شیرانی نے اور طاہر اشرفی نے, یہاں پہ ایک مولانا ہیں, انہوں نے بڑی سخت مخالفت کی کہ یہ جو اسلام میں ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے تو بلوغت 11 سال میں بھی ہو سکتی ہے, 12 سال میں بھی. دیکھیں یہ ایک عرب کا قبائلی معاشرہ تھا اس وقت, جو جس طرح وہاں پہ رواج کو اسلام کے اصولوں کو انٹرپریٹ کیا گیا, آج کے معاشرے میں اس طرح نہیں کیا جا سکتا.
عدنان عادل,
ہماری کی ایک روشن خیال تشریح کی ضرورت ہے.
بالکل بالکل,
قرآن میں ایسی کوئی
بات. بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار عدنان عادل, جو انسانی حقوق کمیشن کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. وائس آف امریکا واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.